आज है 22 जुलाई दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत प्रशासित कश्मीर में आज हुई ताजा हिंसा में एक की मौत, घायल सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों के बारे में क्या सोचते हैं?
हम लोग तो यहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए हैं सर, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं वो अच्छे हैं सर, जो कम पढ़े लिखे हैं वो पथराव करते हैं सर।
गुजरात में दलितों की पिटाई के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मिलवाएंगे मृत गायों की खाल खींचने का काम करने वाले व्यक्ति से। और चलो रियो में आज सुनेंगे 1980 में भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीतने की कहानी।
जब 2 या 3 मिनट रह गए थे, मुझे याद है शॉर्ट कॉर्नर पे, शॉर्ट कॉर्नर दो, जितने भी हाफ लाइन पे लड़के खड़े रहते थे वो उधर देखते नहीं थे, पता नहीं गोल फट्टे में जाएगी कहाँ जाएगी।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। कश्मीर में आज जुमे की नमाज के बाद अलगाववादियों के प्रदर्शन के ऐलान के चलते कर्फ्यू सख्त कर दिया गया। उत्तरी और दक्षिणी कश्मीरी इलाकों से छिटपुट हिंसक की घटनाओं की खबर है। कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की यात्रा पर कश्मीर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह कश्मीर में भड़की हिंसा के बाद हालात का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी लेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन के चरमपंथी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना का एक फौजी मालवाहक AN-32 विमान लापता है। विमान में 29 लोग सवार थे, जिसमें 6 विमान के कर्मचारी थे। और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
दोपहर 1 बजे के आसपास वायुसेना के PRO अनुपम बनर्जी ने BBC से इस विमान के लापता होने की पुष्टि की। इस विमान ने शुक्रवार सुबह 8:30 बजे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी और इसे निर्धारित समय के अनुसार 11:30 बजे वहां पर लैंड करना था। विमान में 29 लोग सवार थे, जिसमें से 6 विमान के कर्मचारी हैं। वायुसेना के अनुसार हवाई जहाज से संपर्क नहीं हो सका है और उसकी तलाश अभी जारी है। भारतीय सेना और वायुसेना में AN-32 जहाजों का व्यापक इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनकी माल ढोने की क्षमता काफी ज्यादा है।
आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि डोपिंग मामले में लंदन और बीजिंग से लिए प्रतिबंधित तत्वों की दोबारा जांच के नमूनों के दूसरे सेट में 45 खिलाड़ियों के नमूने पॉजिटिव आए हैं। IOC का कहना है कि इनमें से 23 खिलाड़ी 2008 के मेडल विजेता हैं। बीजिंग और लंदन ओलंपिक के नमूनों की जाँच के ताज़ा आंकड़ों में पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ियों की संख्या अब 98 हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका के भुलाए जा चुके महिलाओं और पुरुषों की आवाज़ बनेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के नामांकन को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के बाद ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अपराध और हिंसा जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। ओहायो के क्लीवलैंड में चल रहे रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए भाषण के दौरान उन्होंने गैरकानूनी आप्रवासन के खिलाफ कड़े कदम उठाने का वादा किया। उन्होंने कहा, बिना कानून व्यवस्था के समृद्धि नहीं आ सकती। BSP नेता मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर सुर्खियों में आए BJP के निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह के परिवार ने अब मायावती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह का आरोप है कि गुरुवार को जिस तरह से BSP के प्रदर्शन के दौरान उनके परिवार को अपशब्द कहे गए, उससे उनका पूरा परिवार डरा हुआ है और उनकी 12 साल की बेटी तो सदमे में है। दयाशंकर सिंह की माँ त्रेता सिंह की तहरीर पर BSP प्रमुख मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम राजभर, इन सभी पर FIR करा दी गई है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में आज भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को घाटी के सभी 10 जिलों में सड़कों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी तैनात किया गया था। अलगाववादियों ने आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनों की अपील की थी, लेकिन नाकाबंदी और सख्त कर्फ्यू के कारण श्रीनगर और दूसरे जिलों में प्रदर्शन नहीं हुए। लेकिन दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर उतरे। इस दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई में 2 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। पूरी जानकारी के लिए मैंने अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर फोन कर रियाज मसरूर से बात की।
पहले ही अलगाववादियों ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शनों की कॉल दी थी, तो आज सुबह से ही प्रशासन ने कर्फ्यू को और सख्त कर दिया था। पहले तो राजमार्ग पे तो होती है तैनाती सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की, और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां भी होती है, लेकिन आज हमने देखा कि गली मोहल्लों बल्कि घरों के इर्द गिर्द भी बहुत जबरदस्त कॉर्डन था, ताकि जिन गलियों से पथराव के लिए प्रदर्शनकारी निकलते हैं उन गलियों को भी सील किया गया था। और यही वजह है शायद कि जुमा की नमाज के बाद भी जो है जामा मस्जिद के बाहर पथराव नहीं हुआ या श्रीनगर में कहीं पथराव नहीं हुआ, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया, वो बाहर निकले और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई जो देर तक चली। सोपोर में काफी मुठभेड़ हुई, वहां पे कई लोग घायल हो गए, लेकिन दक्षिणी कश्मीर में बहुत बुरी तरह से घायल दो युवकों को श्रीनगर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहां एक की मौत हो गई। इससे पहले ही सुबह कुछ दिन पहले हुई ऐसी ही घटना में एक घायल युवक की आज सुबह ही हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। तो कुल मिलाकर आज दिन में जो है डेटॉल में और दो बॉडीज का जो की बढ़ोतरी हो गई और इस तरह से 50 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल सोर्सेज के मुताबिक मारे गए हैं। इस पूरी जो है ये आंदोलन चला है, लेकिन सरकार कहती है कि सिर्फ 38 लोग मारे गए हैं।
जी, वहीं ये खबरें आ रही हैं कि कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंच रहे हैं और वो सभी पक्षों से बातचीत करेंगे।
ये खबरें अभी सोर्स बेस्ड खबरें हैं, इसमें न तो अभी राज्य सरकार की तरफ से कुछ देखने में आया है न ही केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा है, लेकिन हमें भी सूत्रों ने ये बताया कि पूरी तैयारी हो रही है और सुरक्षा को भी एयरपोर्ट पे बहुत मजीद सख्त किया जा रहा है और पीडीपी जो है पार्टी स्तर पे और बीजेपी भी पार्टी स्तर पे लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए है जिनमें एनजीओज हैं या व्यापारी संगठन हैं। तो कुछ समाचार पत्रों ने तो यहाँ तक लिखा है कि राजनाथ सिंह जो है वो अलगाववादियों से भी बात करने की बात करेंगे या उनको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक उसके संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन दौरा तो निश्चित है, वो आ रहे हैं और उनको यहाँ की सिविल सोसाइटी या यहाँ के स्टेक होल्डर से मिलाने के लिए बीजेपी और पीडीपी काफी सक्रिय हैं।
आज हुई ताजा हिंसा में एक की मौत, ये थी श्रीनगर से रियाज मसरूर। श्रीनगर में ही मौजूद हमारे सहयोगी जुबैर अहमद अस्पताल पहुंचे और कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से बात की।
पीके गुप्ता एक युवा सुरक्षाकर्मी हैं जिनका न केवल सीआरपीएफ में ये पहला साल है बल्कि कश्मीर में उनकी ये पहली पोस्टिंग है। पहले ही साल में इतनी कठिन पोस्टिंग के बारे में वो क्या सोचते हैं?
पहले मैं तो कभी देखा नहीं था, अंदर से तो भय होता है लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है सर।
आदत हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर इस कठिन ड्यूटी के दौरान आप घायल हो जाएं और अस्पताल में पता चले कि आप बाप बन गए हैं तो सारे दर्द भूलकर आप अपने बच्चे को देखने के लिए घर लौटने के लिए मचलते हैं। केरल के कांस्टेबल एन शिवम हाल ही में हिंसा में ग्रेनेड फेंके जाने पर घायल हुए थे, उनका इलाज जारी है लेकिन वो घर जाने के लिए बेकरार है।
अभी मेरा डिलीवरी हुआ, दूसरा बच्चे मैडम हुआ, डिलीवरी हुआ वाइफ का।
नाम हम रख लिए बच्चे का?
नहीं रखा अभी, मैं जाएगा तो एक प्रोग्राम होता है हमारे तरफ 28 दिन के बाद, तब मैं नाम रखता।
तो आप वैसे फोन वोन पे टच में रहते हैं?
फोन अभी यहाँ का नेटवर्क भी नहीं है।
मैं परिवार से कैसे टच में रहते हैं?
बात उधर जब था ना वो बात करता था एक आदमी का, BSNL से बात होती, कभी एक बार टाइम देता था उनको, इस टाइम में फोन करना, इनकमिंग कॉल आता था टाइम फोन करता था।
कितना कठिन होता है परिवार से टच में रहने से जब यहाँ पोस्टिंग है?
बहुत दुख लगता है।
अनेक राज्यों से आए सीआरपीएफ के ये सुरक्षाकर्मी पत्थर बरसाने वाले कश्मीरी प्रदर्शनकारियों के बारे में क्या सोचते हैं? एके गुप्ता कहते हैं,
हम लोग तो यहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए हैं सर, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं वो अच्छे हैं सर, जो कम पढ़े लिखे हैं वो पथराव करते हैं सर।
अधिकारियों के अनुसार कश्मीर में हाल में हुई हिंसा में 900 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे, लेकिन घायल हुए नागरिकों की संख्या और मौतें इससे कहीं ज्यादा है, कई की आंखें भी चली गई हैं। सीआरपीएफ पर जरूरत से अधिक ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम है। एके गुप्ता इस बारे में कहते हैं,
एक्चुअली सर आप सोच सकते हैं हम लोग 22 आदमी को किडनैप लगा था सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं किया। जब सीमा से अधिक होगा तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं करना ही होगा सर।
सीआरपीएफ के जिस कैंप में मैं गया वहाँ 7 सुरक्षा कर्मियों का इलाज चल रहा है, जिनमें से एक गुजरात के पटेल विजय कुमार सबसे सीनियर हैं और जम्मू कश्मीर में कई सालों से तैनात हैं। वो बार बार होने वाली हिंसा के बारे में क्या सोचते हैं?
पाकिस्तान का तो पहले से ही इरादा है कि कश्मीर को हासिल करे, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारत कभी भी कश्मीर को नहीं जाएगा। पाकिस्तान हर साल करोड़ों अरबों जो पैसा पाकिस्तान के सहारे आता है, अदर कंट्री से पैसा आता है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पैसा इधर आता है, इधर के जवानों को पैसा देते है, इनको बहलाते फुसलाते है कि जो फौज के जो आते हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई करो वो कार्रवाई करो। तो ये और एक सर कि के हमको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन फौज कभी दबेंगी नहीं और ना दबने वाली है सर।
सबसे अनुभवी लेकिन सबसे जोशीले भी, यहाँ सबके घाव तो लगभग भर गए हैं लेकिन हिंसा का मनोवैज्ञानिक असर उन पर अभी बाकी है। जुबैर अहमद, BBC श्रीनगर।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात पहुंचे और उन दलित लोगों के परिवारों से मिले जिनकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। केजरीवाल ने ऊना में राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उसे दलित विरोधी बताया। हमारे सहयोगी विनीत खरे मोटा समरियाला पहुंचे और एक दलित व्यक्ति से मुलाकात की जो करीब दशकों से मृत गाय का चमड़ा खींचने का काम कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका?
कन्नू भाई।
आपकी उम्र कितनी है और घर में कौन कौन है?
सात जना।
ये कब से काम कर रहे हैं आप? ये
20 वर्ष थे।
तो आपके दादा परदादा भी यही काम करते थे कि आपने यही काम करना शुरू
किया? करता था।
दिन कैसे बीतता है ये बताइए।
खेड़ू हो दिखे कि भाई मारो माल मरी गयो से तो तमें ले जाओ।
फार्मर आएगा वो बोलेगा कि यहाँ पे ढोर मर गया है, काऊ वगैरह है कि कुछ भी मर गया है, तो वहाँ पे मेरे खेतर में आके तू उठा के वो लेके जा।
फिर मैं सांबड़ू खोल लो।
फिर इवनिंग में जाते उसका सब काम हो जाने के तक, फिर इवनिंग में जाके उसको पूरा फाड़ के उसका जो भी है वो माउस
है
सब निकाल, स्किन निकालेंगे, माउस ले गए और वो जो चीज है ना वो उसके ए जो है वो घर पे लेके आ जाते।
क्या घर पे लेके आ जाते हैं आप?
सांबड़ू
चमड़ा जो है। और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स उसका क्या करते हैं?
ना वो कुछ नहीं,
आपके काम का सिर्फ चमड़ा होता है।
हाँ,
तो कितना पैसा कमा लेते हैं दिन में?
दिन में 200-300-400
कोई भी पक्का नहीं होता।
महीने में 5 आया 3 आया 4 आया, मतलब 200 के हिसाब से 5-6,
तो मतलब करीब 5-6 हजार रुपए महीना।
5-5 हजार।
आपके घर में कितने बच्चे हैं फिर?
3-4 बच्चे।
कितने लड़के कितने लड़की हैं?
3 लड़कियाँ 1 लड़का।
ये तो महंगाई का जमाना है तो फिर कैसे खर्चा चलता है फिर?
तो हूँ करो कौट कसर करे ना, धंधा तो करो और
पड़े। सही नहीं, बिजनेस सही नहीं, उनको सिखाए वो एजुकेटेड नहीं है।
मुझे बस एक बताइए कि आपको वो दिन याद है जब आप पहली बार आपने काम किया?
मारा बापूजी ने आ रहे हूं जातो એટલે એમના થી
મને શીખડતા
ના 15-20 વર્ષ પહેલા નહીં પહેલા નથી મન કરતા હતા
મન નહીં કરતા હતા
તો પછી
શું ખરાબ લગતા હતા
બસ દુર્ગંધ આતી હતી
બધું કેસે રોકતે થે
તો શું કરે ધંધા તો નથી કઈ ભણવા જાતો પણ પૈસા ન તો બાપુજી ઉઠાડી લીધો પછી બાપુજી ને આ રહ્યા પછી હું કરું હતા
ઓ ફાધર ને ફર્સ્ટ સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ સે ઉઠા લ્યા કે ચલ અભી તું મેરે સાથ કામ કરને આ જાય અપના જો પારંપરિક
આપકે આપને બતાયા આપકી 3 લડકિયાં હે 1 લડકા હે પઢાઈ કર રહે હે વો લોગ
હા જી
ક્યા આપ ચાહેંગે કે વો ભી યે કામ કરે
ના એવો નહીં મેં કામ મારા ધંધો જ નથી હવે કરવાનો
બોલતે અભી અભી કરના નહીં દેખ કે
યે જો ઘટના હુઈ હે સર ડર ડર ગયા
હા બરાબર ડરી ગયો।
दलितों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद ऊना में लोग डरे हुए हैं। एक दलित व्यक्ति से बात कर रहे थे विनीत खरे।
BBC इंडिया बोल।
हिंदुत्व की राजनीति में दलितों की जगह कहाँ है? एक ओर भारतीय जनता पार्टी दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, पर दूसरी ओर गुजरात में गाय का चमड़ा खींचने पर दलितों पर गोरक्षक हमला करते हैं। क्या दलितों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा? इस बार इसी विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 23 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1800-11-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो श्रोताओं कल इंडिया बोल 7:30 बजे मेरे साथ जरूर शामिल होइएगा और आपका फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। और अब समय है चलो रियो का। चलो रियो की 9वीं कड़ी में आज सुनिए 16 वर्षों बाद 1980 में भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक और 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस के कांस्य पदक जीतने की कहानी बता रहे हैं हमेशा की तरह रेहान फजल।
चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक भारतीय हॉकी के लिए बहुत खराब रहा। ओलंपिक हॉकी में पहली बार हुआ जब भारत कोई पदक नहीं जीत सका और तो और उसे 7वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। 1976 के ओलंपिक खेलों में ही पहली बार एस्ट्रोटर्फ का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 4 साल बाद मॉस्को में भारत ने 8वीं बार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। 29 जुलाई 1980 की वो दोपहर याद कीजिए जब भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन के हुआन अमात के पेनल्टी कॉर्नर्स की झड़ी को झेलते हुए भारत को पूरे 16 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया था। उस वर्ष ओलंपिक खेलों में हॉलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों ने तत्कालीन सोवियत संघ की अफगान नीति के विरोध में ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया था। सिर्फ 6 देशों की टीमें ही ओलंपिक खेलों में भाग लेने आई थीं। पहले मैच में भारत ने नौसिखिया तंजानिया को 18-0 से हराकर जबरदस्त शुरुआत की। दूसरे मैच में भारत की टक्कर हुई पोलैंड से। अंतिम क्षणों तक भारत की टीम पोलैंड से 1-2 से पीछे थी। बिल्कुल अंतिम सेकेंड में मर्विन फर्नांडिस ने बराबरी का गोल मार भारत की आशाओं को जगाए रखा। उस भारतीय टीम के लेफ्ट आउट और बाद में कप्तान बने सफर इकबाल ने बीबीसी को बताया,
हमारी शुरुआत जो थी तंजानिया बहुत हल्की टीम थी और उसको हम लोगों ने बहुत आराम से मार लिया, मगर जो पोलैंड से जो मैच हुआ वो बहुत, यानी हम लोग जो पसीने छूट गए, मुझे याद है उस मैच में कि हम लोग वी आर ट्रेलिंग, वो एक गोल से हम लोग हार रहे थे, बड़े मुश्किल से इसको इक्वलाइज किया। उसमें ये हुआ कि तो मैन टू मैन मार्किंग, और हम लोग जो मोस्टली लड़के थे मैन टू मैन के आदी नहीं थे। हिंदुस्तान के अंदर मैन टू मैन खेलना बड़ा उसको अच्छा नहीं माना जाता था उस जमाने में। जो भी टीम हमारी पोलैंड से मैच खेली है पिछले 20-30 सालों में, पोलैंड से इतना आसान नहीं रहा इंडिया को जीतना।
भारत अपने तीसरे मैच में स्पेन से भिड़ा जिसे वो बमुश्किल ड्रॉ कर सका। क्यूबा को आसानी से 13-0 से हराने के बाद भारत का मुकाबला हुआ तब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही सोवियत संघ की टीम से। देवेंद्र सिंह ने शानदार पेनल्टी कॉर्नर्स लगाकर भारत को 4-2 से जितवाया। मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान वासुदेवन भास्करन कहते हैं,
ओलंपिक्स में एक मतलब बहुत एडवांटेज सब गेम में होता है, मैच के बाद हमको टीवी और वीडियो में देखने का मतलब मौका मिलता होता है, और उसी मतलब रशिया के मैच को हम देख के लड़के के साथ बैठा है और अपने कोच मतलब बैठ के 2-3 बार इनको रशिया टीम को खेल कर देखा। फर्स्ट टाइम हम लोग वीडियो क्लासेस लेके गया था और वीडियो क्लास में वहाँ हमको मतलब लाइब्रेरी में बैठ के मैच देखा रात पर, और इस मतलब हमारा वो रशिया के ऊपर पेनल्टी कॉर्नर हम लोग डायरेक्ट करना था अपना देवेंद्र सिंह, सो इसलिए हमको उस पेनल्टी कॉर्नर में डायरेक्ट नहीं किया, हम लोग उसमें हम लोग इनडायरेक्ट किया, उसमें हमको ऑल द गोल्स वी गॉट इट ऑन द पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि राइट साइड में हम पेनल्टी कॉर्नर लिया जो और नया तरीका से, और वो भी मतलब रशिया में जाके हम लोग उसी मैच को हमको नेक्स्ट डे हमारा रेस्ट था और उसी शाम को हम लोग प्रैक्टिस किया।
राउंड रोबिन मुकाबलों के बाद भारत और स्पेन की टीमें फाइनल में पहुंची। स्पेन की टीम उस वर्ष की यूरोपियन चैंपियन थी, जफर इकबाल याद करते हैं।
स्पेन काफी मैच्योर टीम थी, राइट हाफ या ग्रेसिया उनका गोलकीपर था, अमाद फुलबैक था जो बहुत स्पेशलिस्ट थे और वो थर्ड या फोर्थ ओलंपिक्स उसमें खेल रहे थे। जब भी हम लोगों को काफी मुश्किल आई क्योंकि टैक्टिकली स्पेन इज वेरी स्ट्रांग टीम और हॉकी काफ़ी खेली जाती है स्पेन के अंदर। जब हम लोग मैच शुरू हुआ कॉन्फिडेंस भी था, काफ़ी ब्लॉक किया, मुझे याद है कि हम लोग को तो खेलने नहीं दिया था लेफ्ट साइड में खास तौर पे, मगर क्योंकि मोहम्मद शाहिद काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर थे मैं अभी भी कहता हूँ, और मोहम्मद शाहिद का जो स्किल और जो स्टिक वर्क था वो काफ़ी यानी दुनिया के अंदर मायने रखता है, और उस तक को उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर सेकेंड हाफ में हम लोगों ने काफी उसको रीगेन किया है, जो पहले हाफ में मैन टू मैन मार्किंग वो जाने नहीं दे रहे लेफ्ट साइड से, उनको मालूम था कि इस साइड को पकड़ना है, तो काफी उन्होंने अपना टैक्टिक्स अप्लाई किया, काफी देर तक रेसिस्ट तो किया हम लोगों, मगर सेकेंड हाफ में शायद ने काफी यानी इंडिविजुअल डॉजिंग करके उनको ब्रेकअप किया।
नर्वस होने के बावजूद भारतीय टीम स्पेन पर शुरू से ही हावी हो गई। लेफ्ट फ्लैंक में जफर इकबाल और मोहम्मद शाहिद कलात्मक हॉकी खेलते हुए बार बार स्पेन की 25 गज की रेखा पर धावा बोलते रहे, लेकिन पहले 2 गोल किए सेंटर फॉरवर्ड सुरेंद्र सिंह सोधी ने। स्पेन ने 1 गोल उतारा, लेकिन फिर राइट आउट कौशिक ने एक और फील्ड गोल करके भारत को 3-1 से आगे कर दिया। भास्करन की पासिंग का जवाब नहीं था। हाफ टाइम के बाद मोहम्मद शाहिद ने कई डिफेंडर्स को चकमा देते हुए रिवर्स फ्लिक से अद्वितीय गोल कर भारत को 4-1 से आगे कर दिया। मोहम्मद शाहिद ने बीबीसी को बताया था,
लकी कही है कि हमारे पास बॉल आया और हमने मतलब 1-2-3 प्लेयर को डांस करते हुए फ्लिक से जो गोल किया वो आज भी सोचते थे कि यादगार हमारा गोल रहता है, क्योंकि मेरे वजह से टीम नहीं जीती, क्योंकि 16 खिलाड़ी होते हैं उनकी वजह से टीम जीती, लेकिन मैंने बड़ा क्लासिकल गोल किया था और जिससे भारत को मतलब जीत का सामना देखना पड़ा।
हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के इस महान खिलाड़ी का परसों ही लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। शाहिद के उस गोल के बाद परिणाम के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया था। भारत से आए खेल संवाददाता खेल बीच में ही छोड़कर प्रेस रूम की तरफ भागे ताकि वहां पर उपलब्ध एक आध अंग्रेजी टाइपराइटरों का पहले इस्तेमाल कर सके। इस बीच भारतीयों का ध्यान भंग हुआ और स्पेनी खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ मैच में झोंक दिया। उस टीम के राइट इन मर्विन फर्नांडिस याद करते हैं।
ओलंपिक का फाइनल होता है, मेरे ख्याल में जो आदमी खेलेगा उन्हीं को पता चलेगा क्या टेंशन है, और मैं समझता हूँ इतना अच्छा खेलने के बाद भी वो हावी इसलिए रहे कि दे हैड नथिंग टू लूज, और ऐसे माहौल में बड़ा मुश्किल था अपने आप को और टीम को संभालने के लिए। उस दिन भास्करन ने टीम को अच्छी तरह संभाला है, ही डिडंट लेट पैनिक गेट इनटू द टीम। हमारे टीम के हर लड़कों को से गेम के अंदर ही बताया कि भाई कूल रहो, कोई बात नहीं, जो कुछ हो रहा है वो तो होता रहेगा लेकिन अपना गेम खेलते रहना।
स्पेन का दबाव बना ही था कि उसी समय संपूर्ण उत्तर भारत में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। कॉमेंट्री सुन रहे लाखों लोग अपने अपने रेडियो सेट छोड़कर अपने घरों से बाहर निकल आए। 10 मिनट बाद जब वो लौटे तो हुआन अमात पेनल्टी कॉर्नर से भारत पर 2 गोल कर चुके थे। खेल खत्म होने में कुछ मिनट शेष, स्कोर 4-3, लेकिन स्पेन के लगभग 10 खिलाड़ी भारत के टीम में। जफर इकबाल को वो रोमांचक क्षण अभी भी याद है।
जब 2 या 3 मिनट रह गए थे मुझे याद है, शॉर्ट कॉर्नर पे शॉर्ट कॉर्नर, दो जितने भी हाफ लाइन पे लड़के खड़े रहते थे वो उधर देखते नहीं थे, पता नहीं गोल फट्टे में जाएगी कहाँ जाएगी। बहरहाल ये था कि जो लास्ट शॉर्ट कॉर्नर में भागने वाला मैच नहीं था, मैं तो दर मैंने मुंह मोड़ लिया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाएगी। जब अमात को जो शॉर्ट कॉर्नर मिला और रिबाउंड उसको मिल गया, मेरे ख्याल में 1 मिनट रह गया था, मगर रिबाउंड मिलके ये था कि बिल्कुल गोल 10 यार्ड पे थी उसकी हिट और क्षेत्री मेरा गोलकीपर था और लेफ्ट पोल भी उसका खाली था कि मैंने कहा ये इसने मार दिया बस गोल। वो इत्तफाक से ऐसा उसने मारा कि 4-5 इंच जो है वो पोल से हट के निकल गई।
भारत लौटने पर विजेता भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बैठाया। इस प्रतियोगिता के बाद से ही मोहम्मद शाहिद की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्डों में होने लगी। 20 वर्षीय शाहिद के लिए वो बहुत महान क्षण था जब वो स्वर्ण पदक के साथ अपने पुश्तैनी शहर बनारस लौटे।
मुझे याद है कि जब 1980 में ओलंपिक में जीत के हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से जब बनारस में हम आए तो यहाँ पर हमको काफी लोग स्टेशन पर लेने पहुंचे थे। सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम ही बनारस में था क्योंकि बनारस में बड़े भारी भारी कलाकार और बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन पैदा हुए हैं। बनारस एक ऐसी नगरी की यहाँ पर बड़े जाने माने लोग हैं, जैसे बिस्मिल्ला साहब हैं, बिरजू महाराज, किशन महाराज हैं, तो यहाँ पर हमारा काफी वेलकम किया गया और जहाँ भी हमको जाते थे तो लोग यही करते थे कि आप स्पीच दीजिए या मास्को ओलंपिक 1980 के बारे में कुछ बताइए, और कहीं जैसे हमारा प्रोग्राम एज ए चीफ गेस्ट हम गए तो वहाँ पर कमेंट्री भी लगी रहती थी कि मोहम्मद शाह ने ये गोल किया और इस टाइप से था। तो 18-19 साल की उम्र में मतलब इतनी शर्मिंदगी हमको महसूस होती थी कि मैंने कहा कि मतलब दिमाग में सोचा कि मैं कहां फंस गया।
अटलांटा ओलंपिक 1996, भारत को ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीते 44 साल हो चुके थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने बैंटमवेट कुश्ती में भारत को कांस्य पदक जितवाया था। 16,000 दिनों का ये अंतराल इतना लंबा था कि उसने 23 वर्षीय कोलकाता वासी और भारत के सबसे प्रतिभावान टेनिस खिलाड़ियों में से एक लिएंडर एड्रियन पेस को कुछ अतिरिक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। जिस सुबह अटलांटा में टेनिस की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए लिएंडर का मुकाबला विश्व वरीयता क्रम में उनसे 31 स्थान ऊंचे फर्नांडो मिलिगनी से हो रहा था, उनसे पूछा गया कि क्या जब 90 करोड़ भारतवासियों की आशाएं आप पर लगी हुई हैं, आप मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं? लिएंडर पेस ने झूठ बोला, नहीं, ये मेरे लिए अन्य मैचों जैसा ही है। हाँ, ड्रेसिंग रूम में अपने डबल्स पार्टनर महेश भूपति से बात करते हुए लिएंडर ने सही बात स्वीकारी, मुझे जीतना है, मुझे हर हालत में जीतना है। शुरू के राउंड्स में एटीपी कंप्यूटर को गलत साबित करते हुए लिएंडर ने अपने से कहीं ऊंची वरीयता वाले खिलाड़ियों रिची रेनीबर्ग, निकोलस परेरा, थॉमस इनक्विस्ट और रेंजो फरलान को हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में उनके सामने थे ब्रूक शील्ड्स, क्या पूरी दुनिया के चहेते और उस समय दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी आंद्रे अगासी। लिएंडर ने अगासी का जमकर मुकाबला किया, यहां तक कि पहले सेट में उन्हें अगासी के खिलाफ 2 ब्रेक पॉइंट भी मिले, लेकिन अगासी का अनुभव उनके काम आया और वो 7-6, 6-3 से जीत गए। लिएंडर पेस ने बीबीसी को बताया।
पहले सेट पॉइंट पे सेकंड सर्व पे मैं चिप एंड चार्ज कर रहा था नेट के ऊपर और मेरा जो रिटर्न ऐसा 2 इंच लॉन्ग पड़ गया, तो वो सेट पॉइंट अभी 30-40। सेकंड सेट पॉइंट पे मैं चिप सही मारा सेंटर ऑफ द कोर्ट पे और आई ट्राई टू कम इन रियली क्लोज एंड तब फोरहैंड वॉली एकदम नेट के ऊपर थे और मैं क्रॉस कोर्ट फोरहैंड वॉली किया और वो 2 इंच आउट थे इस बार। तो दोनों शॉट जो मैं खेला एकदम परफेक्ट खेला, लेकिन टू परफेक्ट, मैं कुछ मार्जिन ऑफ एरर नहीं दिया था और उसको पहले सेट पॉइंट में मैं उसको खेलना था। आई शुड हैव मेड हिम प्ले दैट पास रादर देन गो फॉर सो मच।
उस शाम मेहमानों के लाउंज में अगासी के पिता माइक अगासी की मुलाकात लिएंडर के पिता डॉक्टर वेस पेस से हुई। माइक ने वेस से कहा, मेरा लड़का तो खैर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से है, लेकिन आपका लड़का इस हफ्ते इस तरह खेला है मानो वो दुनिया के 4 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हो। लिएंडर के पिता डॉक्टर वेस पेस ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि लिएंडर की सबसे बड़ी विशेषता है उसका आत्मविश्वास।
But the one thing about Leander, he's amazingly self-confident. So there are periods in time where he predicts.
Leander में एक बात ये है कि उसमें गजब का आत्मविश्वास है। ऐसे मौके आए हैं जब उसने कहा है कि वो फलां फलां टूर्नामेंट में अच्छा करने जा रहा है। मैं उसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। 1990 में उसने मुझसे कहा कि आप विंबलडन क्यों नहीं आते, मैं इसे जीतने जा रहा हूँ इस साल, और मैं मुस्कुरा दिया था, लेकिन लड़के ने उसे जीत कर दिखाया। 1996 के ओलंपिक में भी उसे पूरा विश्वास था कि वो अच्छा करने जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपने पूरे परिवार को वहाँ बुलाना चाहता हूँ और हम सब लोग वहाँ पहुँचे।
कांस्य पदक के लिए लिएंडर का मुकाबला था ब्राजील के फर्नांडो मिलेगिनी से। पहला सेट मिलेगिनी ने 6-3 से जीता, दूसरा सेट लिएंडर के हिस्से रहा। तीसरे सेट में लिएंडर ने लव पर मिलेगिनी की सर्विस तोड़ी, लेकिन अगले ही गेम में मिलेगिनी ने बैकहैंड डाउन द लाइन शॉट लगाकर न सिर्फ हिसाब बराबर किया बल्कि लिएंडर की सर्विस भी तोड़ दी। सारे दर्शक अपनी सीट के कोने पर आ गए, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन लिएंडर ने स्टोन माउंटेन स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय मूल के दर्शकों को निराश नहीं किया। उन्होंने विभिन्न कोणों को इस तरह कवर किया कि मिलेगिनी को शॉट बाहर मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस मैच का आखिरी पॉइंट याद करते हुए लिएंडर कहते हैं,
40-15 पे मैं सर्व फिर आया, फोरहैंड वॉली मारा इस बार क्रॉस कोर्ट, और तब मेलिंजेनी वहां दौड़ के एक लॉब मारा, लेकिन लॉब लॉन्ग ही थे। तब जब मैं देखा कि ये बॉल लॉन्ग जा रहा था, मेरा एक ड्रीम जो था जब मैं छोटा बच्चा था कि ओलंपिक मेरे जीते फुलफिल हुआ, तो काफी खुशी थे उस बार। मेरा पूरा फैमिली अटलांटा में था, मेरा कोच था जयदीप मुखर्जी, महेश भूपति मेरा डबल्स पार्टनर, और मेलिंजेनी भी, हम लोग दोनों जूनियर्स काफी साल खेले एक संग, और जब हम जीता वो हमको बोला कि यू नो इफ इट वाज एनीवन एल्स आई वुडंट बी दैट हैप्पी, बट सिंस इट्स यू आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, यू नो, एंड आई गेस आई वुड हैव फेल्ट द सेम वे फॉर हिम।
और अब वो बेला आई जिसका करोड़ों भारतवासियों को वर्षों से इंतजार था। पूरे भारत ने लगभग रुंधे हुए गले से देखा जब विक्ट्री पोडियम पर तिरंगा ऊपर गया।
रिप्रेजेंटिंग इंडिया लिएंडर पेस एंड देयर विल बी अ स्पेशल ग्लो ऑफ प्राइड इन हिज हार्ट बिकॉज़ बोथ हिज पेरेंट्स वर ओलंपियंस रिप्रेजेंटिंग इंडिया।
स्वर्ण पदक हिस्से में रहा आंद्रे अगासी के, रजत पदक जीता स्पेन के सर्जेई ब्रुगुएरा ने, कांस्य पदक विजेता लिएंडर पेस ने उस महान क्षण को याद किया।
मेरे लिए वो सबसे प्राउड मोमेंट है जब हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग फ्लाई कर रहे, और मोमेंट वर्ड में काफी मुश्किल है एक्सप्लेन करने, लेकिन बहुत स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए।
चलो रियो में आज यही देते हैं विराम, अगले अंक में आपको बताएंगे सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी के कांस्य पदक और बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के स्वर्ण पदक जीतने की कहानी। तब तक रेहान फदल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आप चलो रियो की 9वीं कड़ी दोबारा विश्व भारती में सुबह 8 बजे सुन सकते हैं। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की यात्रा पर कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर में भड़की हिंसा के बाद हालात का वो जायजा लेंगे। भारतीय वायुसेना का एक फौजी मालवाहक AN-32 विमान लापता है। विमान में 29 लोग सवार थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि डोपिंग मामले में लंदन और बीजिंग से लिए प्रतिबंधित तत्वों की दोबारा जांच के नमूनों के सेट में 45 खिलाड़ियों के नमूने पॉजिटिव आए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी तृप्ति श्रीवास्तव। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।